12। एक साहिब नवाब मोहम्मद अली खान नाम झज्जर के नवाबों में से लुधियाना में रहते थे और उन्होंने लुधियाना में इस गरज से एक सराय बनाई थी कि ताज जिस कदर गल्ला बाहर से आता है उसकी इसी सराय में खरीदो फरोख्त हो और इसी सराय में गल्ला बेचने वाले अपना माल उतारें। फिर ऐसा हुआ कि एक और शख्स इस काम में उनका रहजन हो गया और नवाब साहिब की सराय बेकार हो गई, जिससे उनको बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने इस मुसीबत के वक्त दुआ के लिए मेरी तरफ इल्तिजा की और कबल इसके जो उनका खत कादियान में पहुंचे मेरे पर खुदा ने जाहिर कर दिया कि इस मजमून का खत उन्होंने रवाना किया है और खुदा ताला ने मुझे इतला दी कि कुछ अरसे के लिए उनकी ये रोक उठा दी जाएगी और इस गम से उनको निजात दी जाएगी। चुनाचे मैंने इस तमाम हाल से कबल अज़ वक्त उनको खबर कर दी और उनको ये सख्त अजब हुआ कि मेरा खत जो बिला तवक्कुफ रवाना किया गया था इसका इलम क्यों कर हो गया। और फिर इस पेशगोई के पूरा होने से एक अजीब रंग का एतिकाद मेरी निस्बत उसके दिल में बैठ गया और वो हमेशा मुझे कहा करता था कि मैंने अपनी नोटबुक में इस पेशगोई को यादाश्त के लिए लिख छोड़ा है और हमेशा इसको पढ़ लिया करता हूँ। और कई लोगों को उसने अपनी ये किताब दिखलाई और एक दिन मेरे रूबरू पटियाला में वज़ीर मोहम्मद हुसैन खान साहिब को भी किताब में वो मौका दिखलाया और कहा कि मेरे यकीन के लिए ये काफ़ी है कि मेरे ख़त की इतला खुदा ताला की तरफ से ख़त पहुंचने से पहले मिल गई जिसकी मुझको बिला तवक्कुफ़ खबर दी गई। और दूसरे ये कि ये मेरा काम जो बज़ाहिर एक नाशुदनी अमर था इसके हो जाने की कबल अज़ वक्त इतला दे दी और मैं जानता हूँ कि ये इल्म जो कुदरत के साथ मिला हुआ है बजुज़ खुदा के और किसी की ताकत में नहीं। ऐसा ही नवाब साहिब मौसूफ़ का आखिर ज़िंदगी तक हमेशा ये हाल रहा कि इस पेशगोई की याद से उनको एक वजद की हालत हो जाती थी और हमेशा इसको पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी मौत का वक्त आया और मैं अयादत के लिए गया तो उस शाम के वक्त जिसकी सुबह में उनका इंतकाल होना था उन्होंने मुझको देख कर ये हिम्मत की कि बावजूद सख्त तकलीफ खून बवासीर के जिसकी कसरत से उनकी वफात हुई अंदर के दालान में चले गए और वो नोटबुक अपनी ले आए जिसमें वो पेशगोई माहू उसके पूरा हो जाने के हालात के मुंदरज थी। फिर वो किताब मुझको दिखलाई और कहा कि मैं इसको बड़े अहतमाम से महफूज रखता हूँ कि इससे खुदा की कुदरत याद आती है। और फिर दूसरे दिन सुबह के वक्त फौत हो गए। मुझे यकीन है कि वो नोटबुक उनकी जिसको बड़े अहतमाम और मोहब्बत से वो अपने पास रखते थे अब लुधियाना में उनके बेटे के पास महफूज होगी और ज़रूर होगी। तो देखो किस किस पहलू से खुदा ताला के निशान जाहिर हुए। 13। राजा जहांदाद खान साहिब जो अब गुजरांवाला में एक्स्ट्रा असिस्टेंट हैं और अपने नवाह के रईस आज़म और बहुत से देहात के जागीरदार हैं एक निशान के वो गवाह हैं जिसके पूरा होने पर उन्होंने बैत की अगर हल्फन पूछा जाए तो हरगिज़ इनकार नहीं करेंगे। 14। एक मरतबा मुझे अपने एक ज़मींदारी मुकदमे के मुतालिक जो तहसील बटाला में दायर था ख्वाब आई कि झंडा सिंह नाम एक दखीलकार पर जो दफ़ा 5 एक्ट मुजारियान का दखीलकार था हमारी डिग्री हो गई है। उस दखीलकार पर बवजह कीमत एक दरख्त कीकर जिसको उसने अपने खेत से हमारी इजाज़त के बगैर काट लिया था 14 रुपये की नालिश की गई थी। तो ख्वाब में दिखाया गया कि वो दावा मसमू होकर डिग्री की गई। इत्तेफाकन मैंने इस ख्वाब को उसी आर्या के पास बयान किया जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ यानी लाला शरमपत खत्री साकिन का अध्ययन। और फिर दूसरे दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि झंडा सिंह मजकूर माह 16 या 17 अपने गवाहों के मुकदमा मजकूरा में अपनी तायद में शहादत दिलाकर बटाला से कादियान में वापस आया और ये मशहूर किया कि मुकदमा खारिज हुआ। इस पर आर्या मजकूर ने हंसी के तौर पर कहा कि आपकी ख्वाब गलत हो गई और नालिश 14 रुपया तहसील से खारिज हुई। मैंने उसको कहा कि उसने यकीनन झूठ बोला है। तब उसने कहा कि वो अकेला नहीं बल्कि 15 या 16 उसके साथ आदमी आए हैं जो गवाह थे। वो सब कहते हैं कि मुकदमा खारिज हुआ और गैर मुमकिन है कि इस कदर लोग झूठ बोलते हों। और वो आर्या मस्जिद में जो करीब बाजार है ये बात कहकर चला गया। اور میں مسجد میں اکیلا رہ گیا اور عصر کا وقت تھا۔ تب ایک ابھی آواز کرنے والے نے زور سے کہا کہ ڈگری ہو گئی ہے، اور ایسی شدت سے آواز تھی کہ میں نے خیال کیا کہ یہ آواز اوروں نے بھی سنی ہوگی۔ تب میں اس آریہ سے پھر ملا اور اپنے الہام سے اطلاع دی، مگر وہ گواہوں کی کثرت تعداد کو دیکھ کر اعتبار نہ کر سکا اور پھر بھی ہنس کر چلا گیا، گویا وہ اپنے دل میں میری خام خیالی پر ہنسا۔ دوسرے دن خود میں بٹالہ میں گیا اور تحصیلدار کے مثل خان متھرا داس نامی سے دریافت کیا کہ ہمارے مقدمے میں کیا حکم ہوا۔ اس نے کہا کہ ڈگری ہوئی۔ میں نے کہا کہ پھر کیا سبب ہے کہ جھنڈا سنگھ اور اس کے تمام گواہوں نے قادیان میں جا کر یہ مشہور کیا ہے کہ مقدمہ خارج ہوا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے بھی ایک طور سے سچ کہا ہے، بات یہ ہے کہ تحصیلدار نیا ہے، میری غیر حاضری میں وہ مقدمہ پیش ہوا تھا اور میں اتفاقاً قریباً ڈیڑھ گھنٹے تک کسی کام کو چلا گیا تھا، چنانچہ اس وقت جب میں نہیں تھا جھنڈا سنگھ مدعا علیہ نے تحصیلدار کو صاحب کمشنر کا ایک فیصلہ دکھلایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ قادیان کے دخیل کاروں کو اختیار ہے کہ بغیر مالکوں کی اجازت کے اپنے کھیتوں سے حسب ضرورت درخت کاٹ لیا کریں، اس لیے تحصیلدار نے اس کی نقل فیصلہ کو دیکھ کر آپ کا مقدمہ خارج کر دیا اور ان کو رخصت کر دیا۔ تب قریباً ایک گھنٹے کے بعد میں آ گیا اور مجھے انہوں نے اپنا وہ حکم دکھلایا۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس مدعا علیہ نے دھوکہ دیا ہے، یہ فیصلہ تو منسوخ شدہ ہے اور اس کے بعد میں صاحب فائنینشیل کمشنر کا فیصلہ ہے جو شامل مثل ہے جس سے یہ حکم منسوخ کیا گیا۔ تب تحصیلدار نے وہ فیصلہ دیکھ کر اپنی روبکار فی الفور چاک کر دی اور نئے سرے روبکار لکھ کر آپ کی دیگر ماہ خرچہ کی۔ حاشیہ: ان زمینداری تعلقات سے جو ابتدائی زندگی سے میرے ساتھ رہے، کوئی تعجب نہ کرے کیونکہ احادیث نبویہ پر غور کرنے سے بصراحت معلوم ہوگا کہ وہ مسیح موعود حارث کہلائے گا، یعنی زمیندار، اور زمینداری کے خاندان سے ہوگا۔
من ہو۔ حاشیہ ختم۔